तो नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पासुकर। आज हमारे साथ जलवायु परिवर्तन विषय पर विशेष बातचीत के लिए आमंत्रित है लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग संस्था से उपयंत्री अनिल कुमार बंसोल जी। नमस्कार सर।
नमस्कार पातुरकर जी।
सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी ही बातें सामने आ रही है और इसका नुकसान भी बहुत दिखाई दे रहा है, तो आखिर जलवायु परिवर्तन क्या होता है?
जलवायु परिवर्तन मतलब जो अपने एक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ये जो बहुत सी फैक्ट्री जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस जो अपने, मैं अब शॉर्ट में चाहूंगा बोलना, उसमें उसके कारण जो अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा बढ़ गई है, पर पेड़ जंगल कम हो रहे हैं जो कि उसको शोषित करते हैं, उसके उसके और ऑक्सीजन जो अपने लिए आवश्यक है उसका ये कम हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में घुलने के कारण अपने यहाँ उष्णता का प्रमाण बढ़ गया, उसका असर अपने पृथ्वी पर भी पड़ रहा है। तो ये भविष्य में, और हम अपने, क्योंकि विभाग की ये काम हमारा जल स्रोतों का संरक्षण है, इसलिए मैं, मेरे देखने में आ रहा है कि सालों साल हमारा जो हैंडपंप का जल या फिर नलकूप का जल स्तर हर साल कम होते चला जा, तो भविष्य में हमें पानी के संकट को फेस करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इस हेतु हमें रिचार्जिंग पे जोर देना पड़ेगा।
सर जी, जैसा कि आपने बोला कि जलवायु जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की स्रोत
जी
कम होते जा रहे, अभी विगत दिनों कृषि वैज्ञानिक केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक
हाँ जी
सुरेंद्र पन्नासी जी का भी साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने कहा था कि समुद्र के सतह तक अभी हैंडपंप का यानी बोर खोदा जा रहा है,
हाँ,
खारा पानी आ रहा है। तो हम
ये देखिए ना, ये मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, जो पीने योग्य पानी है अपने जमीन के अंदर वो लगभग 1000 फीट तक समाप्त हो चुका है, इसी जलवायु और पर्यावरण के इसके कारण अति दोहन हुआ है। तो हमें अब अति दोहन रोक के सरफेस सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे शासन की मंशा यही है कि गांव गांव जो अब नल जल योजना है उसको नलकूप बेस न मानते हुए जो हमारा वर्षा के जल डैम में जमा होता है उसी से समूह नल जल योजना बनाने पे अधिक जोर दिया जा रहा है।
तो हम आपसे यही जानना चाह रहे सर कि शासन द्वारा हर घर नल हर घर जल नल जल योजना की बात की जा रही है,
हाँ,
और समुद्र सतह तक अधिकतर बोर खोदे जा रहे, जमीन के अंदर का पानी खत्म होते जा रहा है, तो ऐसी
हाँ,
परिस्थितियों में क्या हर घर नल हर घर जल संभव हो पाएगा?
बिल्कुल संभव हो पाएगा, क्योंकि हम ये डैम की मात्राएं बढ़ा रहे। अभी देखिए आप, ये जुनेवानी अपना मोहगांव जलाशय बना हुआ है, मोहगांव जलाशय से हमने अभी पांडुरा ब्लॉक के अधिकांश गांव उस पे बेस मान के हमारे जो अभी जल जीवन मिशन के जो कार्य हो रहे गांव के अंदर, घर घर नल दिए जा रहे, अभी वर्तमान स्रोत जो नलकूप है या जो भी है या कुआ है उससे अभी हम फिलहाल चालू कर दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो सरफेस सोर्स आएगा तो उसको वहां जोड़ दिया जाएगा नलकूप के या कुएं के एवज में। तो ये अभी योजना अभी उसकी ये चल रही है, सर्वे चल रहा है।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपका विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग है और सीधा पानी से जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में पीने योग्य जल कितना बचा है?
पीने योग्य जल देखिए, वैसे भी अपने यहाँ 3/4 भाग में अपना समुद्र है, तो पीने योग्य जो पानी है अपने पास बहुत कम मात्रा है, उसमें भी अपने भारत में भरपूर मात्रा में पेयजल है दूसरे देशों में। तो भविष्य में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो तीसरा विश्व युद्ध विभिन्न मुद्दों को लेकर होता था, तो अब कहीं भगवान ना करे लेकिन ऐसी भी स्थिति बन सकती है पानी के लिए।
सर, मैंने आपसे इसलिए यह सवाल पूछा कि पीने योग्य जल कितना है, क्योंकि हाँ, अभी देखने में आ रहा कि पांडुना तरफ यदि हम पानी की बात करें तो हैंडपंप का पानी पीने से उनके दांत पीले हो रहे और दांत
नहीं, वो देखिए अपन जो पानी और जल में अपन फर्क बताता हूं मैं। पानी मतलब जनरल पानी, उसमें अब कुछ ऐसे तत्व घुलनशील रहते हैं कि 8 तत्व जो अपने को दिखते नहीं है, उसमें जो एक फ्लोराइड नाम का तत्व है उसका 0 to 1 PPM जो है परमिसिबल है अपने शरीर के लिए, उससे कोई आवश्यक भी है, लेकिन यदि उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो अपने शरीर में बहुत सी विकृतियां आती है। तो जैसे कि दांत, ये तो प्रथम स्टेज पे हो गया, दांत पीले होना, कमजोर होना, लेकिन उससे हड्डियां तक कमजोर होती, कुबड़ापन आना और अपंगता तक आ सक जाती है उससे।
तो क्या सर, ये जो जो बात आप बता रहे पानी में गुणवत्ता की, क्या यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ भाग है?
नहीं, ये जलवायु जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी में जो पानी के स्रोत के लिए हम दिनों दिन नीचे नीचे जा रहे हैं, तो जो पृथ्वी के अंदर जो घुलनशील तत्व है वो हमें टच पानी के साथ मिल जाते हैं। पहले ये ऊपरी लेवल पे ये जो तत्व है कम पाए जाते हैं। जैसे अपन कुएं का पानी लेंगे, कुएं पहले पूर्व के जमाने में कुएं का ही इस्तेमाल ज्यादा होता था, तो ये तत्व है अपने 30 मीटर तक कम पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अधिक गहराई में जाएंगे तो ये विभिन्न तत्वों का उसमें अधिक मात्रा में पानी में मिल जाते हैं। उसके लिए भी एक उपाय है, जैसे अभी किया अपन, जितनी रिचार्जिंग करेंगे तो वो जो, जैसे मान लीजिए कि 1 कप शक्कर है अपनी पास, उसमें अपन ने आधे गिलास कप में 3-4 चम्मच शक्कर डाल दी, उसके बाद अपन उसी 1 कप पानी से 4 कप पानी बनाते हैं, तो वो तत्व है वो शक्कर वो चौथे गिलास में कम चल जाएगी। ये बेस मानते हुए हम रिचार्जिंग यदि करेंगे तो जो घुलनशील तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई है तो रिचार्जिंग से वो डाइल्यूट हो जाती है, वो उससे हमें उतना प्रयोग हमें करते रहना पड़ेगा, रिचार्जिंग पे भी हमें जोर देना पड़ेगा। शासन की योजना है कि जो जो बहने वाला अधिक, अपने यहाँ बारिश हुई पिछले साल, आपने देखा होगा कि एवरेज से ज्यादा ही वर्षा हुई, लेकिन फिर भी इस साल एक पानी क्या ऊपरी नाले से नदी से बह जाता है, नहीं उसमें लेकिन रिचार्जिंग नहीं हुई। यदि हम जगह जगह उसको रोके तो जो पानी का जो रिचार्जिंग होने से ये भी हमें लाभ मिल सकता है।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा अभी अपन ने पांडुरना के पानी की बात की,
जी
जहाँ पानी पीने से दांत पीले पड़ रहे हैं, लेकिन
हाँ
सिवनी जिले में यदि हम बात करते तो वहाँ तेलीय पानी आता है, यानी साबुन लगाने के बाद साबुन नहीं निकल पाते, इसके पीछे क्या?
वो अपने शरीर के लिए उतना ये नहीं है, पर वो उसको कठोरता कहेंगे, पानी के उसमें कठोरता, क्षारीय पानी है वो।
इसके पीछे क्या कारण है सर?
वो भी जब अपने जमीन का ही उसके जो मिनरल्स मिले हुए, आयरन भी होता है, ये अपने हरे भाग में आयरन पाया जाता है पानी में, उससे खाना लेट पकता है, खाना काला पड़ता है।
सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने पानी रिचार्जिंग की बात की, ये
जी
समस्या क्यों आई? क्योंकि अभी देखने में आ रहा कि कभी बहुत
ये
अधिक बाढ़
अधिक
होती है,
दोहन, मुख्यतः अधिक दोहन।
यानी हम ये मान सकते हैं कि भाई अत्यधिक दोहन से, चाहे अवैध
जी
उत्खनन हो, चाहे अवैध जल का उपयोग हो, इसके
हाँ
कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है।
दिया, और वृक्षारोपण कम, क्योंकि
सर
हाँ ये जो अपना वर्षा का जल होता है, अधिकांश जल अपने उनकी जो पेड़ों की जड़ें होती है उसके द्वारा भी संग्रहित हो जाता है, और जो हमें ग्राउंड लेवल में उससे पानी की मात्रा बढ़ती है।
सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में पदस्थ हो, और
जी
क्योंकि आपका निज निवास
जी
कन्हान नदी के किनारे पर है, और
हाँ जी
कन्हान नदी को बहुत अधिक बाढ़ आती है, लेकिन कन्हान नदी पर छिंदवाड़ा जिले में डैम न होने की स्थिति में इसका अधिकतर
नहीं,
पानी
अभी वो प्रस्तावित है और उसका कार्य प्रगति पर भी है। ये जामघाट से लेके तो हमारे रंगारी सावंगा तक उसमें विभिन्न टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और उसका कार्य प्रगति पर भी है।
तो उस वहां का जल कितना संसद को मिल पाएगा छिंदवाड़ा जिले को?
उन्हें अपने दोनों ब्लॉक तो उससे कवर हो जाएंगे, सौसर ब्लॉक प्लस पांडुरना ब्लॉक
सर, हम आपसे ये भी
और प्लस सिंचाई।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शोभना नदी पर भी बाढ़ की बात हो रही है, तो वो
जी
बाढ़ स्वीकृत हुआ या नहीं?
नहीं, उस संबंध में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जामघाट से जो अपने कनान परियोजना है ये स्वीकृत उसको मिल चुकी है और सर्वे का कार्य अभी प्रारंभ भी है।
सर, हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन से खेती
जी
किसानी पर क्या नुकसान हो रहा है?
खेती किसानी पे भी नुकसान हो रहा है उसका, क्योंकि अब अपना पानी में जो तत्व मिले हुए है, अपन सिंचाई करते हैं तो जो अपने पौधों को जो जल मिलना है योग्य जल वो नहीं मिल पाता है, ग्रीष्म अपना वातावरण में गर्मी अधिक होने से और जो अपना नेचुरल टेम्परेचर था और उससे अधिक यदि किसी पौधे को उष्णता मिलती है तो उसका विपरीत असर तो पड़ता ही है।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जनमानस में और सरकार ने क्या प्रयास करने चाहिए।
सबसे अच्छा उपयोग ज्यादा है अधिकांश वृक्षारोपण और अधिकांश अपने को डैम बनाना पड़ेगा।
सर जैसा कि आप वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं
जी,
आज हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रोज एक पौधा लगाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं
जी, जी, जी।
लेकिन उससे कहीं अधिक वृक्षों की कटाई हो रही है आज।
अब इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा।
नहीं तो क्या कटाई रोकने की दिशा में सरकार ने काम करना चाहिए कि नहीं?
करना चाहिए ना,
क्योंकि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके खेतों में भी एक समय अमराइया हुआ करती थी।
हाँ जी।
और नदी नालियों के किनारे आजकल,
अब मेरा एक व्यक्तिगत भी मैं जो आपको बताऊंगा ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि जो वृक्षारोपण करते हैं किसी समय, तो मैंने बहुत सी जगह देखा है मैक्सिमम अपन जो गावरानी नीम होता है, नीम बड़ पीपल और जो गावरानी आम है अपने अंग्रेजों के जमाने की ब्रिटिश कालीन, बहुत सी अमराइया होती थी पहले रोड के किनारे दो दो तीन तीन किलोमीटर तक, तो निश्चित रूप से वो उसी टाइप के हमें वृक्षारोपण करना चाहिए।
क्योंकि सर आज वो अमराइया खत्म हो चुकी है और नदी नाले किनारे जो आजन अर्जुन और बबुल के जो पेड़ थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं।
हाँ वो तो बाढ़ में बह रहे
हैं। मेरा ये मानना है और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक वृक्ष लगाने के बजाय यदि हम 10 वृक्षों को बचाए
जी
तो यह संभव हो पाएगा कि नहीं?
हो सकता है।
इस दिशा में सरकार ने और आम जनमानस में क्या करना चाहिए किसानों में?
मैं तो कहता हूँ जनमानस में जैसे आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आपने लगभग मैंने देखा भी था आपके वो जो आपने ये मंदिर बनाया था उसके बाजू में एक बाग विकसित किया था, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए थे उसमें, वो मेरे द्वारा उसको देखा भी गया है। यदि उसी टाइप के अपन आपने जो सामाजिक संस्था वो यदि विस्तृत रूप से और विभिन्न संस्था इस ओर ख्याल रखेगी तो निश्चित रूप से हम उसपे कंट्रोल कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री अनिल कुमार बंसोल जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी से रूबरू होकर जलवायु परिवर्तन इस विषय पर अपनी बात रखते हुए पानी की गुणवत्ता पर अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।